نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رمضان رحمت ہے. آج ہمارے پاس ایک موضوع ہے، رمضان ایک رحمت ہے. وہ کیسے ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو ذرا سا اس کو سمجھیے. کب سے بارش نہیں ہوئی پاکستان میں؟ آپ کے شہر میں بارش کب سے نہیں ہوئی؟ کافی دن ہو گئے. ٹھیک ہے، جب کافی پتے گندے ہو جاتے ہیں، مٹی پڑتی ہے، اسی طرح سے گرمی آ جاتی ہے اور زمین خشک ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور ادھر ادھر سے بادل اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے حکم سے برستے ہیں. سورت نور میں پورا فینومینن بتایا گیا ہے، کلاؤڈ فارمیشن کہتے ہیں اس کو. بالکل اسی طرح اللہ کی مخلوقات، اور یاد رکھیے گا کہ اللہ نے تین قسم کی مخلوقات بنائی، بڑی بڑی کیٹیگری کریں تو. نمبر ایک فرشتے، یہ کون ہیں؟ نوری، نور سے بنے، روشنی. پھر ناری، آگ سے بنائی ہوئی مخلوق، جنات. اور تیسرے خاکی، خاک سے بنے ہوئے، یعنی انسان. ان تینوں میں سے سب سے اونچا درجہ انسان کا ہے. انسان روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ پہلے مٹی کا ایک پتلا بنایا، آدم علیہ السلام کا، پھر آسمان سے روح لا کر اس میں ڈالی گئی. یہ سارے میسیجز ہم قرآن میں تفسیر کے دوران بہت دفعہ پڑھتے ہیں. جب دو مختلف چیزیں جڑی، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، ہاٹ پاٹ گھروں میں ہوتا ہے نا، آپ باہر سے پکڑتے ہیں ٹھنڈا، وہ کہتے ہیں نہیں کھولنے جا کے، جب کھولتے نا تو اندر اس کے گرم کھانا ہے. وجہ، اندر سٹیل کا ایک بول ہے، کوئی بھی بتات ہوگی نا، اور باہر پلاسٹک ہے. اندر کی سٹیل کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے، پلاسٹک کی کوئی اور ہے. جب آپ کھانا اس میں ڈالتے ہیں گرم گرم اور اوپر سے اس کو ڈھک دیتے ہیں، تو وہ جو گرم برتن تھا اندر کا، وہ کھانے کو گرم رہنے میں مدد دیتا ہے. باہر آپ نے چونکہ اس کو پکڑنا تھا، کیری کرنا تھا، تو تھی. بالکل آپ اسی ہاٹ پاٹ کو ذہن میں لا کر انسان کو دیکھیے. انسان اندر سے گرم ہو، باہر سے ٹھنڈا ہو. خوبصورت آئیڈیل یہ ہے، اللہ نے جسم کے ساتھ جب روح جوڑی تو گرمی پیدا ہوئی. مثال دوں، اللہ تعالیٰ سب بھی کو زندگیاں دے اور ہمارے اپنے پیارے بھی اور ہم بھی ان کے لیے خوشی کے ذریعہ بنے. کبھی فوت ہوئے بندے کو ٹچ کیا؟ اس وقت آپ اپنی نفس دیکھیں، ہم سب کی نارمل ہے. بخار ہوگا تو ذرا گرم ہوگی. انسان زندگی میں گرم ہے، جب روح نکلتی ہے تو آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے بندہ. تو موت کی صورت میں نکلی کیا چیز؟ روح. روح اندر کے ہاٹ پاٹ کا، اندر کا برتن ہے، باہر کا جسم ٹھنڈا ہے. وہ اس روح سے زندگی گرم ہے، باہر ٹھنڈی ہے. ابھی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا سوالات والی، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. آپ سب بچیوں میں سے، بڑی عورتیں، چھوٹے بڑے انسانوں کا بیسٹ کمبینیشن وہ بندہ ہوتا ہے، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رسم ہو کے بزم ہو، پاک دلو پاک جو. ہمیں باہر سے ٹھنڈے دکھنا چاہیے، اندر سے گرم ہو، گرم جوشی ہو، کچھ حرکت ہو، اندر سے مردگی نہ. کیوں علامہ اقبال نے کہا کہ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرد کوہن کا چارہ. امتوں کو جو پرانی بیماریاں لگ چکی ہیں، اس کا علاج کس میں ہے؟ دل کی اصلاح میں ہے. تو جسم اور روح جب ملتی ہے تو دو مختلف چیزیں ملی. اب آپ کو ہاٹ پاٹ سے یاد رہے گا نا، وہ اس کی اور چیز ہے، اس کی اور تقاضا ہے. آپ پلاسٹک کو مائکرو ویو میں رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ سٹیل کو نہیں رکھ سکتے. تو پھر دونوں کے تقاضے فرق ہیں، مٹیریل فرق ہے، کیئر فرق ہے. بالکل اسی طرح سے ایک ہیومن میں، انسان میں، جب جسم اور روح کو اکٹھا کیا گیا، تو لکھ لیں کہ یہ دو مختلف چیزیں ایک جگہ پہ آ گئیں. روح کا تقاضا کچھ اور، اور جسم کا تقاضا کچھ اور. روح آسمانوں سے لائی گئی، उसको आसमानों की गिजा अच्छी लगती है। जिसम मट्टी की चीजें खा खा के बड़ा हुआ, अनाज, गल्ला, फल, फूल, तो जिसम का दिल इसमें लगता है। अब हम सारा साल, खास तौर पे 11 महीने, हम इस जिसम के ऊपर ज्यादा गौर करते हैं। नाश्ता, लंच, 4 बजे की चाय, डिनर, फिर उसके बाद कावा, फिर मिड नाइट स्नैक्स, हम पूरा वक्त बिजी रहते हैं। हमारा किचन बंद ही नहीं होने का नाम लेता। बिलीव मी कि जब किचन ही आधा दिन खुला रहेगा तो फिर उसको खाना और आपका जिस्म भी बिजी होगा। आज से एक अपने लिए कोड वर्ड लिखिए, जितना वक्त मैं किचन में गुजारती हूँ उतना ही वक्त मेरे जिस्म में मैदे को भी काम करना पड़ता है। ऐसी है ना। अब जब आप जिस्म में खाने, पानी, अब धो रहे, अब कर रहे सफाई, फिर उसमें आप देखिए किचन फैलता है, फिर आप उसमें सब्जी काटते हैं, फिर लाते, पूरा सर्कल हमारे घरों में खाने पीने के गिर्द घूमता है। तो जब आप 11 महीने अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उसी को ज़्यादा वक्त दे देते हैं, तो जिस्म को तंदुरुस्त रखते हैं, तो हमारी रूह थोड़ी सी फीकी पड़ती है। जैसे हेल्दी डाइट ना ना बंदा ले तो एनेमिक हो जाता है, खून की कमी है, धूप में ना बैठे तो विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, सुनी हुई ना ये चीज़ें, कैल्शियम की कमी जी, पोटेशियम की कमी, डॉक्टर्स के पास चले जाएं वो ज़रूर आपके अंदर कोई कमी निकालेंगे। दो हस्तियां ऐसी हैं जो कभी आपको बुरे नंबर नहीं देती, एक उस्ताद और एक डॉक्टर। अच्छा भला बंदा भी डॉक्टर के पास जाएगा, उन्होंने कोई गलती निकाल के ही भेजनी है जी, तुम्हारे जिस्म में ये गलती हो गई है, उस्ताद का भी यही हाल होता है ना। बिल्कुल इसी तरह से जब हम अपने जिस्मानी तकाजों में रहते हैं, अब हम क्या सोचते हैं ये रहमत है। मिसाल, आज सुबह नाश्ते में आपने पराठा और अंडा खाया, दोपहर के लिए आपके लिए कोई बड़ी मजे की चीज और जो हेल्दी है खा रहे, आप क्या सोचते हैं मेरे जिस्म पे रहमत हो रही है। टेस्ट, शादी का खाना, टेस्ट रहमत लगती है ना। लेकिन आप सब जानते हैं जब हम मुस्तकिल हैवी खाना खाते हैं, मुस्तकिल अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, तो बिलाखिर हमारा मैदा ख़राब होता है ना। बिल्कुल इस बात को समझें, 11 महीने हम अपने जिस्म के तकाजे पूरी करने की कोशिशों में लगे होते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कि इससे हमारा जिस्म हेल्दी रहेगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, बस यार खोरी कहते हैं, ज़्यादा खाना जिस्म ख़राब होता है। कहते हैं कि दुबला पतला बंदा, कमजोर बंदा, कम खाने वाला लंबी उम्र पाता है। उसकी दो वजूहत सोचिए जरा, कम खाएगा मैदा कम घिसेगा। ये सी जैसे आपने 22 मॉडल की नई गाड़ी ली, 0 मीटर्स पे ली थी, आप बस उसको कम कम इस्तेमाल करते हैं। आज 23 आ गया, एक गाड़ी जो 1 साल पहले आपने नई खरीदी, बड़ी मुनासिब सी चलाई, आज भी वो नहीं लगेगी। लुक्स लाइक न्यू, इस तस्वीर को जिन में रखिए। चलिए अब आपने एक गाड़ी ली पिछले साल, बहुत चलाई, मिस यूज़ की, चलाई भी, साफ भी नहीं रखी, उसकी ट्यूनिंग भी नहीं कराई। अब 1 साल बाद ये गाड़ी अगर आप बेचना चाहें और उसकी हालत देखे, कोई कोई कहेगा ये नहीं है। आप 1 साल पहले, यानी इधर की नहीं बात कर रही, आपका कोई ब्रांड न्यू घर बना और आप उसमें गए, आपको अल्लाह ने तौफीक दी, आपके हस्बैंड, आपके अब्बू भाई जो भी हैं, ब्रांड न्यू घर में आप गए, बड़ा अच्छा लगता है, हर चीज़ नहीं। 1 साल बाद आपकी हिफाजत है कि आप वो नए से भी अच्छा हो जाए या ख़राब लगे। तो क्या पता चली, पहली बात जो मैंने कहनी थी वो कहती है, अपने जोम में हम अपने जिस्म की खिदमत कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं ये हमारे जिस्म पे रहमत है, चले हमारे नहीं, ये हमारे बच्चों पे अल्लाह की रहमत है कि उनको इतने अच्छे अच्छे खाने मिल रहे हैं खाने को। लेकिन एक्चुअली वो उन पर रहमत से ज़्यादा जहमत होती है कि इतने खाने, इतनी मुख्तलिफ चीज़ों को उनको जज्ब करना, हजम करना पड़ता है। वापस आइए, जब आपने अपने जिस्म के तकाजे पूरे करने में इतना वक्त लगाया तो रूह भूखी रही। और मैं इस जिस्म और रूह के तकाजे को एक और एंगल से देती हूँ, आप में जो मैरिड सिस्टर्स हैं उनको समझ आएगी। पहला बच्चा कितनी तवज्जो लेता है, माँ अपने पहले बच्चे के लिए बहुत केयरिंग होती है, इवन घर वाले, बल्कि सास भी कहती है बेटा तुम इसको देख लो, बाकी काम मैं कर लूँगी। अच्छा सुबह भी उसके साथ, शाम भी उसके साथ, सोना जागना वक्त नहीं मिलता, खुश भी है, मेहनत भी कर रही है, इतने में एक और बेबी आने की उम्मीद लग जाए। और कुछ माँ बाप जब दूसरा बेबी आता है तो क्या होता है, पहला थोड़ा सा पीछे हो जाता है। पहले तो वो डिलीवरी के दिनों में ही वो बच्चा पता नहीं नानी के पास रहेगा कि दादी फूफो या खाला कोई रखेगी ना, फिर वो जब माँ घर आएगी तो खुद भी नकाहत में, अब दूसरे बेबी को उसने नर्सिंग करनी है, फीड करना है। तो जब दूसरा बेबी आया ना तो पहला पीछे हुआ, हालांकि पिछले पूरे साल में अपने पिछले बेबी को बहुत पैम्पर किया हुआ था, बिगाड़ा हुआ नहीं कह लें तो चले उसकी आते की ना। आप सोचिए इस बात को इधर लाइए, 11 महीने में जिस्म पैम्पर्ड था, अब रूह की गजा, रूह के ऊपर रहमत का महीना आ रहा है, न्यू बेबी रमजान है। जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी रूह पर क्या रहमत होती है, उसको उसका खाना मिलता है। आपको अंदाजा नहीं हो सकता इस चीज का, इतना इल्ला ये कि आप वाकई फर्स्ट हैंड किसी बाहर के मुल्कों में घूमने गई, चले किसी के हस्बैंड ने कहा कि हम बच्चों को इस दफा छुट्टियों में अमेरिका ले जाते हैं और जाएंगे भी ऐसी जगहों पे जहाँ गोरे रहते हैं, मसलन डिज्नीलैंड, ये वो होटलों में भी रहेंगे। अब वहाँ उनको पहली बात है मुस्लिम फूड नहीं मिलेगा, दूसरी बात उनको पाकिस्तानी खाना नहीं मिलेगा, वो बाहर से फीका और हलाल खाना ढूंढ डांट के खाएंगे। आप कहते हैं जिस दिन वो वापस आ रहे होंगे फोन पे आपको क्या कहेंगे, मक्खियों भरे दही भले लेके आना, दाल चावल, उनके लिए दाल चावल एक रहमत होगी उस दिन। बात में जो कहना चाह रही है ना, जो चीज हमारे पास होती है ना हमें पता नहीं चलता उसकी वैल्यू। हम सारा साल जिस्म के तकाजों में रूह के तकाजों को भूल जाते हैं, और जब रमजान आता है ना तो ये रूह की ईद होती है, ये रूह की मौजें करने का दिन होता है। अल्लाह ने जैसे जिस्म के तकाजों के लिए ज़मीन पे एक दस्तरखान बिछा दिया जिससे आपको रंग बिरंगी सब्जियां और इस तरह के खाने पीने मिलते हैं, इसी तरह एक रूह का दस्तरखान है। और वो क्या है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतिल क़द्र, ये रूह का दस्तरखान क्या है, कुरान, आसमान से उतरा। अब हमारी रूह चूंकि आसमान से आई है ना तो उसको वहां की चीजें अच्छी लगती हैं। जैसे हम पाकिस्तानी लोग दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, हम उनकी हर चीज अडॉप्ट कर लेते हैं, रंग ढंग पहनना ओढ़ना लाइफस्टाइल, लेकिन एक चीज हम अपनी नहीं छोड़ते, देसी खाने, मिर्चे। क्यों, हमारी भूख ही खत्म होती है देसी खाने से। आप एक दिन इटालियन खाना खा लें, दूसरे दिन चाइनीज खा लें, तीसरे दिन अरबिक फूड दे दे कोई, चौथे दिन आपको लेबनीज फूड कोई दे दे, पांचवे दिन क्या दिल करेगा, दाल चावल सब्जी भिंडियाँ करेले, है ना। बस ये रूह की तड़प, रूह तड़प रही होती है, कुछ मेरा भी ख्याल करो, ये तुम मुझे क्या खिला रहे हो, ये तुम किस चीज को रूह की गिजा कहते हो, तुम क्या करते हो। जितना ज्यादा आप इस महीने में कुरान से ताल्लुक जोड़ेंगे ना, आपकी रूह पे अल्लाह की रहमत होगी। तो रमजान और कुरान जब मिल जाता है तो हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें होती हैं। अल्लाह ने 30 दिनों का ये ट्रेनिंग सेशन देकर आपको मुझे आप बहुत कुछ दिया, वक्त की पाबंदी, पंक्चुअलिटी, हमें एक अल्लाह का तकवा, सिर्फ एक अजान होने की देर है या नहीं होने की, और वही चीज़ खजूर जो हाथ में पकड़ी थी वो आप खा सकते हैं। खाना खा रहे थे, सहरी का खात्मा हो गया, वहीं छोड़ दिया। कैसे इंसान टाइम मैनेजमेंट पे, इबादत पे, अल्लाह के हुक्म पे चलता जाता है। तो रमज़ान चूँकि अल्लाह की रहमत का महीना है, इसमें आपने इरादी और गैर इरादी तौर पर गुनाहों से बचना, फितरी बात है। जब पेट हर वक्त भरा रहेगा ना फिर दिमाग भी कई चीज़ों में जाएगा, भूखे पेट गुना भी कोई नहीं होता। आप कहते भूखे पेट इबादत नहीं होती, मैं कहती हूँ भूखे पेट गुना भी नहीं होता। जो बच्चे इस वक्त बिगड़ चुके हैं आपको आंखें दिखाते हैं, ज़रा सा उनका रोटी पानी कम करें। जिन बच्चों को आप इतना खिला रहे हैं और जंक खिला रहे हैं वो तो हाइपर होंगे, कभी वो ड्रिंक्स पिएंगे, फिजी ड्रिंक पिएंगे, कभी वो ऑयली चिप्स खाएंगे, कभी कुछ, तो वो तो तंग करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इस महीने में हमें जो सबक देना है वो क्या है कि तुम दूसरों के लिए सराप-ए रहमत बन जाओ। आप सबने कोशिश करनी है, सबसे पहले तो अपने ऊपर रहम करें और फिर अपने साथ वालों पे रहमत करें। आप इस तरीके से दूसरे लोगों के साथ अपना ताल्लुक रखें कि वो आपको बददुआएं ना दें, आपको दुआएं दें। आप बिल्कुल लाइफ को आसान कीजिए। अक्सर लोगों को ये बात समझ आती भी है लेकिन फिर भी वो कहते हैं क्या करें, हमारे घर वाले नहीं ये पसंद करते, ये है। तो बस एक चीज़ छोटी सी जिस पे इंशाल्लाह थोड़ी सी मज़ीद बात करके ले चलूँगी कि हम रमज़ान की रहमतों को हासिल कैसे करें, यानी रहमते इलाही का हसूल कैसे मुमकिन है, कैसे ये रहमत मुझे मिले, कैसे मैं अल्लाह ताला की इन रहमतों को ले सकूं। तो सबसे पहली बात, अभी हमारे पास काफ़ी दिन है माशाल्लाह, हम अल्लाह से दुआ शुरू करते हैं कि अल्लाह इस साल रमज़ान की रहमतों से फैज़याब कर, मुझे रोज़े की रहमत मिले, मुझे उम्रे की रहमत मिले, मुझे अल्लाह ताला से चीज़ें ऐसी मिल जाएं कि जिससे खैर हो। दूसरी ये दुआ करें कि अल्लाह मैं बीमार ना हूँ। बीमारी में तो हर रहमत ज़हमत बन जाती है, तो अपनी दुआओं में ये दुआ शामिल कर लीजिए कि अल्लाह ताला मुझे बीमार ना करना। तीसरी बात, एक और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस पूरे महीने में कोई अनयूजल सफ़र ना करना पड़े, और अमूमन ऐसे सफ़र किसी की फतीदगी पे होते हैं। तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम में से कोई जाए ना, हम में से जितने मौजूद हैं अल्लाह ताला इन सब को रखना। आप देखिए ना, ये शाबान का महीना कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। हर साल शाबान में बड़ी अचानक मौतें होती हैं। अक्सर ऐसे लगता है कि वो लोग जिन्होंने रखा हुआ था जहन में, कोई नहीं बहुत सारा अच्छा महीना आ रहा है, नेकियां करनी है, अब गुनाह कर लो। आपको मुझे पता है कि आप में रमजान का चांद देखेंगे कि नहीं? जो ही आप देखेंगे कि रमजानुल मुबारक का चांद दिखता है, चारों तरफ अल्लाह की रहमतों की सौगात बटने लगती है, कभी माफियां, कभी रहमत, कहीं बारिश। और इस एक महीने की रहमतों से फायदा उठाने के लिए आपको उससे पहले तैयार रहना पड़ेगा। प्लानिंग कीजिए आप सब, खुद अपने लिए भी रहमत बनना है, दूसरों के लिए भी बनना है। अल्लाह ने वो सारे इख्तमाम कर दिए जो आप वेलकम रमजान के लेक्चर्स में सुनती हैं, जन्नत खोल दी जाती, जहन्नम बंद कर दी जाती, शयातीन को ताले लगा दिए जाते, अर्श के नीचे से हवाएं चलती हैं, यानी बहुत कुछ है जो मैं इस वक्त नहीं कोट करना चाह रही क्योंकि ये सब कुछ मौजूद है। और इंशाल्लाह आगे जब हमारा वेलकम रमजान का मौका आएगा तो उस पर भी आप देखेंगे। लेकिन इस वक्त आप ये दुआ करें कि अल्लाह मैंने अपनी रूहानी तरक्की करनी है, इस साल मैंने अपनी नमाजों पे फोकस करना है, अभी से शुरू करें, अपनी नमाजों को दुरुस्त करें, छोटी छोटी सूरतें कुरान की नफलों में पढ़नी शुरू कर दें, सुन्नतों में पढ़नी शुरू कर दें। दुआओं की बुक्स बहुत सारी मिलती हैं, ऐप्स भी मौजूद हैं, एक बुक कोई भी चूज़ कर लीजिए इस साल, फिर उसको गो थ्रू करें। अच्छा, ये दुआ मुझे आती है, ये नहीं आती, ये है, वो है, हाईलाइट करें, मैंने इस साल ये दुआ याद करनी है। आप लोग इधर स्कूल में भी करेंगे और हर साल आपको दी भी जाती हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर दौरे कुरान के साथ दुआओं का भी एक एक पूरा बुकलेट बनता है, डेली इस साल भी मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त जहन में ये रखिए कि जब आमतौर पर हम अपने घरों में होते हैं ना तो जो भी होता चलता है, लेकिन जब मेहमान के आने की खबर होती है ना तो हम चीज़ों को सेट करना शुरू करते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं। अच्छा, ये उनका कमरा होगा, यहाँ ये रखेंगे, और ये कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मेहमान का आपको पता भी हो और आप टस से मस ना हो, फिर क्या होगा, उसके सामने शर्मिंदा होंगे। तो बजाय इसके कि रमज़ान का चांद दिखे तो सफाइयाँ शुरू करें, हर तरह की सेटिंग शुरू करें, अब कीजिए। अल्लाह से कहें कि अल्लाह ताला मुझे इस साल रमज़ान को अपने दिल का मेहमान बनाना है और उसकी रहमतों से मैंने हिस्सा लेना है। फिर आप देखिए कि आप मत तो वैसे ही कुरान से जुड़े हुए हैं, जो साथी, जो स्टूडेंट्स बाहर हमारे यानी लिसनर्स हैं, वो भी ये चीज़ें इनमें रखें। ये जगह, ये मदरसा अल्लाह की रहमत है। कितनी बड़ी बड़ी पीछे गलियां छोड़कर हम इस गली में क्यों आए? खुली रोड से छोड़कर हम इसमें क्यों आए? क्योंकि इधर कुरान की रहमत है। आप इस पूरी गली के लिए रहमत बने, इस पूरे इलाके के लिए रहमत बने, मोहल्ले के लिए रहमत बने। और जितना ज़्यादा आप लोगों की फिक्र करेंगे, अल्लाह ताला आपकी करेगा। और अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। उलमा कहते हैं इस दुनिया में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत कुरान है। अल्लाह ने अपने नाम अर्रहमान अर्रहीम अरहम और अरहमुर राहिमीन में जिस लफ्ज को इस्तेमाल किया है वो कुरान के साथ जुड़ गए। आपको कुरान पढ़ने के बाद महसूस होता है कि आपके ऊपर अल्लाह की रहमतें हो रही हैं, होता है ना? और जो लोग सारा साल नहीं आते, सुन नहीं पाते, मसरूफ बहुत हैं, घरदारी के झंझट हैं, आप उनको प्यार से दावत दें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके बाद ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जब हमारी रूह से राब होगी, एक तरफ रोज़ा, दूसरी तरफ कुरान, तीसरी तरफ रात की तरावी, फिर इफ्तारियाँ सहरियाँ, तो रहमतों से भरा हुआ महीना है। इसमें थोड़े में भी बरकत है। अल्लाह ताला इसमें मोमिन के रिस्क में कुशादगी कर देता है। आप सलीके तरीके के साथ चलें तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ी सी सैलरी जो आपके हस्बैंड की या आपके घर में आपके भाई अब्बू को लाते हैं उसमें भी बरकत महसूस होगी। एक बंदे का सिर्फ खाना ऐड कर लें, और वो होता है हमारे देसी खानों में, तो एक नहीं 8-10 लोगों का खाना भी बीच में ऐड हो जाता है। तो नियत कर लेते हैं बस एक का खाना एक्स्ट्रा डालूंगी, और वो किसको देना है? आप लोग मोस्टली इसी गलियों में रहते होंगे ना, आप सोचिए आपकी गली में कोई, जरूरी नहीं कि कोई गरीब भी हो, कोई ऐसा घर होगा जहाँ कोई औरत नहीं है, पंजाबी में छड़े कहते हैं, कोई अकेला मर्द है, कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, नाम लिख लें इन अंकल जी को मैंने किस दिन खाना देना है, और कह दें उनको पहले से भी कि मैं आपको इस जुम्मे के दिन इफ्तारी भेजूंगी। फिर दूसरी तरफ आप देखें कोई यतीम है, कोई मिस्कीन है, अमीरों को भी दीजिए, खाते पीतों को भी दीजिए, लेकिन मैं अक्सर ये कहती हूँ और कहूँगी भी, जिनको देना उनको पहले से बता दें। आपका अपना ही दस्तरखान माशाल्लाह इतना भरा पड़ा है, बाहर से और आ जाए तो लोगों को बोझ लगेगा। तो 30 दिन 30 लोगों का खाना, कैसे? अपने में से एक दो पकौड़े पकड़ लीजिए, थोड़े से दही बड़े उठा लीजिए, कुछ चावल बनाए दे दी। कोई ज़रूरी नहीं होता कि बहुत बड़ा दस्तरखान लगाया जाए, सिंपल रखिए। और ये डेली टिप्स दी जा रही हैं जो आप पिछले लेक्चर्स में भी सुन लें, एक वक्त में एक खाना, कैसा? सूखा। अगर आपने ड्राई आइटम बनाना है तो एक, अगर चले दही या चाट टाइप चीज़ है तो एक, ताकि उसकी कदर हो। आप देखेंगे एक चीज़ बनाएं चूम चाट के लोग खा जाएंगे, और जब सारी चीज़ें होंगी ना तो थोड़ी थोड़ी एंड में सारी बचती हैं। और दूसरी बात है कि इन चीज़ों में पढ़ने से या इन चीज़ों को अपने लिए ये ना समझ लें कि मेरे ऊपर कोई बहुत ज्यादती होगी, हाय मेरे बच्चे ने तो रोज़ा रखा था, नहीं। माँ की रहमत क्या है? मूसा की माँ अल्लाह के हुक्म से बच्चे को समंदर में या दरिया में डाल दिए, अल्लाह ने उस बच्चे को कहाँ पहुँचा दिया? महल में। आपको क्या बताया? आप अपने बच्चों के जो लाड देख रहे हैं वो उनको बिगाड़ दें, और आप ज़रा सा उनके ऊपर कोई ज़रा तरबियत का हाथ रखें तो अल्लाह ताला उनको बना दे। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ये रहमतें हमारे आए। और जो ही अपने रमज़ान का चांद देखना है और उसके इख्तमाम करना है, अल्लाह कहते हैं फमैन शाहिदा मिनकुम, तुम में से जो देखे। तो ये शाहिदा के लफ्ज़ की एक तफसीर जो है उसको उलमा ने मुशाहिदा कहा है, चांद देखना। तो आपने दुआ पढ़नी है, किस किस को आती है दुआ? मिलके मांगे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिलमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्ला। और अल्लाह ताला इस पूरे महीने को आपके लिए रहमतों का महीना बनाए, मगफरतों का महीना बनाए, और इंशाल्लाह इसी छत के नीचे आपने कुरान सुनना है। जितने साथी हैं इस वक्त भी नियत करें, दूसरों को बताएं। देखिए कि हम घरों में भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं कुरान। लोग कहते हैं नहीं सुनना नहीं है, पढ़ना है। समझ जो आती है ना मिल के, इस महफिल पे अल्लाह ताला की रहमत है, फरिश्ते आते हैं। और सबसे बड़ी बात है वक्त का एहसास भी नहीं होता। तो अल्लाह ताला आपसे मेरे से राज़ी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। रिवायत है ना कि जब रमजान की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला नजरे रहमत फरमाता है, और जिस पे अल्लाह की रहमत की नजर पड़ गई उसको अजाब नहीं होगा। वो रोजा जिसमें रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह को कस्तूरी से ज्यादा प्यारी लगती है, वो दिन आने वाले हैं। कमर कस लें, अपने आप को रिलैक्स करें, मुबारक दें। कई लोग चले गए इस पूरे साल में, जरा याद तो कीजिए उन लोगों को, पिछले साल आपके साथ थे, आज नहीं है। आप तो हैं ना, अल्लाह ताला आपको इन रहमतों में हिस्सेदार करें, अल्लाह ताला इस जगह पे भी अपनी रहमतें करें, और अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों की बेहतरीन कदर की तौफीक अता फरमाए। आपके करीब दौरे कुरान का होना आपके ऊपर अल्लाह की रहमत है। ना जाइए दूर, सफ़र मत कीजिए, वक्त और रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। खुद पूछ के जाएं, इस जगह के अलावा जिन और जगहों पे भी होने हैं, आप अपने उधर रहने वाली दोस्तों, घर वाले, फैमिलीज जो हैं उनको भी बताइए, और मोहब्बतों के साथ इस पैगाम को आम करना है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरे सामने जितने सवाल जो हैं, मैं उनमें से क्विकली ज़रा सा जवाब दे दूँ। नमाज में कुरान को देख कर तिलावत की जा सकती है, फ़र्ज़ या नफिल में वजाहत है? जी, सुन्नत नफिल में कुरान को देख कर पढ़ सकते हैं, फर्जों में नहीं उठाना चाहिए, वो एक गैर मामूली हरकत ज्यादा हो जाएगी। ये कहती हैं कि मुझे दिल का मसला है, मैं रोजा रखना चाहती हूँ, मेरे वालदैन रखने नहीं देते, मेरी उम्र कम है, मसाने के मसले की वजह से नमाज भी अदा नहीं कर सकती। पहले तो हम सब आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको पूरी सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके दिल को भी ठीक कर दे और जिस्म के हर निज़ाम को ठीक करे, और वो कर सकता है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर जिस तरीके से आपको गाइड करते हैं उनकी पूरी इंस्ट्रक्शंस को सामने रखें, फिर भी सहरी में उठिए, सही हेल्दी खाना खाइए, और नियत कर लें कि जहाँ दिल की घबराहट होने लगी छोड़ दूंगी। कोई गुनाह नहीं, कोई उसका कफारा नहीं, और एंड पे देख लीजिए कि कितने रोजे नहीं रख सके उसका कफारा दे दें या कजा कर ले। जैसे भी मैंने आज बीच में बात सुनाई भी है, आप कह रही है मसाने की वजह से आप नमाज अदा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होगा, फिर भी नमाज तो अदा होगी, उसका तरीका फर्क होगा। यानी आप वॉशरूम यूज़ कीजिए, फ्रेश वजू करके नमाज पढ़ लें, फिर उसके दौरान अगर कोई यूरिनेट हो जाता है, कोई कतरे लग जाते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हम कैसे जान सकते हैं कि हम हक पर हैं? हमारा कोई भी फैसला जो हम कर रहे हैं या कोई दुआ जो हम मांग रहे हैं, तो कैसे पता चले कि वो सही भी है कि नहीं? एक जुमले में इसका जवाब है, अंदर का सुकून आपको इस बात की खबर देता है कि आप हक पर हैं। बातिल में कभी सुकून नहीं, बेसुकूना रहता है बंदा। और दुआएं आप मांगते जाइए जो ठीक है, जायज़ दुआएं मांगिए, कबूल करना ना करना अल्लाह का काम है, आपको इबादत का अजर मिलेगा। ये कहती हैं कि मेरे भाई बहुत सख्त बीमार हैं, यहाँ तक कि मतलब वो टॉयलेट भी यूज़ नहीं कर पाते, यानी बेड रिडन है, और वो भी जिंदा है, तो इनके रोज़े कौन रखे, इनकी बीवी या बच्चे? जी, बीमारी की नौईयत अगर ऐसी है जिसमें वो भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते तो उनकी तरफ से कफारा दे दीजिए। जो रोज़े नहीं रखे गए थे पीरियड्स या किसी वजह से, बीमारी के और कुछ और, तादाद भी मालूम नहीं, काफ़ी साल गुजर गए, ऐसी सूरत में क्या करें? ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, अमूमन इंसान को पता होता है कि मुझे किस उम्र में पीरियड शुरू हुए, और अपनी आदत भी पता होती है, 6 हैं, काउंट कीजिए पिछले 20 साल, मसलन 20 को 6 से ज़रब दे दीजिए, कितने हो गए? 120। अब 120 रोज़ों को आप काउंट कर लीजिए, आदत बना लें, हर महीने के 3 रोज़े या पीर जुमेरात। पीर जुमेरात जो रखते हैं ना रोज़ा, अमूमन एक महीने में उसके 8 रोज़े, और जिस महीने में 5 वीक आते हैं 3 माह के बाद ऑलमोस्ट, उसमें 10 रोज़े हो जाएंगे उसके। ठीक है, आराम से आपकी गिनती पूरी हो जाएगी, एक साल में आपका ये कफारा पूरा हो जाएगा। आप 3 रोज़े या में 20 के डाल लें, बीच में जो दिन आते हैं रोज़ों की, जैसे जिसमें हम नफिल रोज़े रखते हैं, बस अशरा ज़िल हज्जा 9 दिन शुरू के रोज़े रखें, इसी फ़र्ज़ रोज़े की नीयत रखें। हाँ, जब आप रोज़ा रखें तो आपको पता होना चाहिए कि फ़र्ज़ है। पूरी कोशिश कीजिए कसरत से सदका दें, कफ़ारे की कोई भी सदका भी देते हैं ना किसी को, तो नीयत कर लिया करें मैंने अपने उन रोज़ों की कज़ा का दिया है। ठीक है, अल्लाह को कह दिया करें, अल्लाह ताला ये जिधर चाहिए डाल दें। देखना, कोई आपको आपके डोनेशन देता है, नहीं जी मेरे इन पैसों से कारपेट ही डाल दें, ठीक है, अब कारपेट तो है, वो कहेंगे नहीं जी मैंने तो कारपेट डलवाना है, अब रखा हुआ था फिर एक और लाना है, और दूसरा आके कहता है ये लीजिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ डाल दें, आपको किस में ज़्यादा सहूलत है। बस अल्लाह को भी ये कहा करें, अल्लाह मेरी जो कमी है जो बेशी है तुझे पता है, जब से मैं बालिग हुई आज तक मेरी जो कमी बेशी है ये मेरा खर्च उसमें लगा दे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन व जालना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे, हमें रमज़ान तक ज़िंदा रखे, हमें रमज़ान की एक एक घड़ी से फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना दे। या अल्लाह हमारी बीमारियाँ परेशानियाँ तकलीफ़ें, या अल्लाह हमारी किसी भी इबादत जो है उसमें कमी ना हो ज़्यादती हो, और या अल्लाह हमें बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों का हक अदा करने की तौफीक दे। या अल्लाह इस मदरसे को क़यामत तक आबाद रख, इसके लिए कोशिशें करने वाले, इसको चलाने वाले, इसके लिए जो भी तन मन धन माल जान से कोशिश करते हैं अल्लाह ताला तो उनकी हिफाजत फरमा, और या अल्लाह यहाँ से हमेशा खैर फूटे, मोहब्बत फूटे, हक की बात हो। या अल्लाह हमें दुश्मनियों से ज़्यादा दोस्तियाँ बनानी है, अल्लाह ताला हम सब से बेहतरीन राज़ी हो, और हमारे माँ बाप पे रहम फरमाए, जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश फरमाए। सुबहाना रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम सलाम।